भगवान का जो स्वरूप है प्रेम ही मानो भगवान के स्वरूप में प्रकट हुए। जो जिनमें जो प्रेम एक जो चीज है वो प्रेम ही खुद ही भगवान के तत्व में भगवान के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान सच्चिदानंद ब्रह्म ही सगुण साकार के रूप में प्रकट होते हैं। तो सच्चिदानंद जो ब्रह्म जो है वह स्वयं प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, रसमय है। चाहे रस कह दो, चाहे अमृत कह दो, चाहे प्रेम कह दो और चाहे आनंद कह दो, एक ही चीज है। तो परमात्मा आनंदमय है, रसमय है, प्रेममय है। वो प्रेम का जो शब्द है वो भक्ति मार्ग में उसका प्रयोग होता है, और आनंद का जो प्रयोग है, अमृत का जो प्रयोग है और रस का जो प्रयोग है, ये दोनों ही मार्गों के मायने का प्रयोग होता है। जो हम कहते हैं कि भगवान प्रेममय है, उस दिशा में कह दें कि रसमय है, तो एक ही अर्थ लगता है। या कह दें कि भगवान आनंदमय है, एक ही अर्थ लगता है। जो सतचितानंद घन जिसको हम आनंदमय ब्रह्म कहते हैं, वे आनंदमय ब्रह्म ही समझो कि साक्षात भगवान श्री राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को, श्री राम को हम सच्चिदान रूप कह सकते हैं। ये जो कहते हैं कि भगवान क्या चीज है, कि जिनमें जो प्रेम है वो प्रेम ही भगवान श्री राम या श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ, तो यूं कह दें कि विज्ञानानंद ब्रह्म ही है, तो श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में आपने प्रकट हुए, तो बात एक ही है। तो प्रेम शब्द किसका वाचक हुआ? सच्चिदानंद ब्रह्म का वाचक हुआ। तो सच्चिदानंद जो ब्रह्म है वह स्वयं समझो कि आनंद स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, रस रूप है। श्रुति जी कहती है कि परमात्मा तो रसमय है, तो वो जो रस है तो जीवा को स्वाद रूप रस नहीं, देवताओं के पान करने के योग जो अमृत है वो अमृत नहीं, देवताओं के पान करने के योग जो अमृत है, और उस क्रम जो रस है वो माइक है, वो राजसी है। और परमात्मा जो रसमय आनंदमय है, ये तीनों गुणों से अतीत है। साधन अवस्था के बीच के मां जो एक भगवान के साथ में प्रेम को नातो है, वो प्रेम सात्विक प्रेम, वो प्रेम असली जो परमात्मा को जो स्वरूप है वह को प्रतिबिंब मात्र है उस परमात्मा से। किंतु वास्तव में जो परमात्मा को प्रेममय जो स्वरूप है वो चेतन स्वरूप, वो जो चेतन जो प्रेम स्वरूप है वह स्वयं एक प्रकार से भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। फिर भी लोगों से छिपने के लिए अपने ऊपर एक माया का पर्दा डाल लेते हैं, और माया उनकी चेरी है, उनके अधीन है, वे माया के दास नहीं, माया के पति, माया के स्वामी। संसारिक जीवों के ऊपर जो माया का प्रभाव है वो दूसरी प्रकार का है। हम संसारिक जितने जीव हैं वे तो माया की रस्सियों से बंधे हुए हैं, वे तो एक प्रकार से माया जैसे नाच ना चाहती है वैसे लोग नाचते हैं, किंतु वे माया पति है। और वहां का जो विषय है वो तीनों लोगों के बाहर की चीज है, तीनों गुणों के बाहर की चीज है। जहाँ भगवान का जिनमें नित्य धाम है, और जहाँ समझो कि भगवान साकार रूप से चिन्मय रूप से वास करते हैं, और वहाँ उनके सारे पदार्थ चेतन है, उनके सारे आयुध चेतन है, और वहाँ के वासी सब ऐसा चेतन है। जितने भक्त है उनका शरीर भी सब चिन्मय है, और भगवान का शरीर भी चिन्मय है, वहां जो दिव्य जो नित्य जो परम धाम है, जिससे ऊपर और कोई धाम विशेष नहीं है, वो दिव्य धाम कहो, चिन्मय धाम कहो, तेजोमय धाम कहो, उनके अनेक नाम हैं। वहां की जो धातु है वो चेतन है, वहां नाना प्रकार का रूप आकार होते हुए भी धातु से सब एक चीज है। जैसे सोना है, सोना धातु है और उसके सैकड़ी प्रकार के गहने हो सकते हैं, उनके सैकड़ी नाम रूप अलग अलग हो सकते हैं, किंतु धातु से विचार किया जाता है तो एक सोना है। इसी प्रकार से फिर धातु की दृष्टि से विचार किया जाता है तो वहां केवल एक चेतन धातु है, और नाम रूप और आकृति से देखा जावे तो उनके अनेक रूप हो सकते हैं, अनेक नाम हो सकते हैं। यह है असंयोग की साधन का फल। तो साधन काल के समय के बीच के वहां जो साध जो परमात्मा उसमें जो प्रेम है, उसकी भगवान ने विशेष आपने प्रशंसा की है। जो भगवान को प्राप्त हो जाता है, ऐसा जो भक्तिमान पुरुष है, जिनके बीच के मां भक्तिमान पुरुषों के लक्षण अक्सर से घटते हैं, कि जैसे गीता की 12वीं अध्याय के मां 13 के श्लोक से लेकर के 19 के श्लोक तक जो बात बतलाई है कि अद्वैत शास्त्र भूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहंकार है, सम दुख सुख क्षमे इत्यादि, उन भक्तों के बीच में ये बात बतलाई है जो सबके मां द्वेष भाव से रहित है और सबके ऊपर जिनकी अपने विशुद्ध हेतु रही दया है, सबके साथ में विशुद्ध प्रेम है, और अहंकार रहित है, ममता रहित है, क्षमावान है, सुख दुख में सम है, और हर वक्त आनंद के वहां मस्त है, संतुष्ट है, मन जिनका जीता हुआ है, बुद्धि जिनकी स्थिर है, और मन और बुद्धि परमात्मा के माही हर वक्त तन्मय है, भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। ये जिनके मन स्वाभाविक है उनकी भगवान खूब प्रशंसा की, अपने मुख से बार बार ये कहा कि ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। ये सिद्ध पुरुषों की बात है, किंतु दूसरा एक जो साधक है और इन गुणों को लक्ष्य बना करके इनके अनुसार बनना चाहता है, भगवान का प्रेमी बनना चाहता है, भगवान जिसको बार बार कहते हैं वह मेरा प्यारा है, वह मेरा प्यारा है, ऐसा प्यारा बनने के लिए उतारू हो रहा है, रात और दिन समझो कि उसी के मां लगा हुआ है, उस साधक भक्त के लिए भगवान ने यह कहा कि वो मेरा अतिशय प्यारा है। सिद्ध जो पुरुष है वह तो हमारे समझो कि प्यारे भक्त, और साधक जो है वो भगवान कहते हैं कि मेरा अतिशय प्यारा है, क्योंकि भगवान के परम धाम में जो चले गए या यहीं जो भगवान को प्राप्त हो चुके तो चाहे यहां रहो, चाहे परम धाम में रहो, कहीं रहो, और चाहे भगवान के वहां विलीन हो जाओ, एक ही बात है, कोई उसके लिए फर्क नहीं। ऐसे जो पुरुष है वे भगवान के स्वरूप में जो स्थित है वह तो स्थित है, उनके लिए भगवान और क्या कहूं। किंतु जिनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है और वास्तु के बीच के मां परमात्मा का दर्शन भी नहीं हुआ है और परमात्मा के साकार निराकार सगुण निर्गुण स्वरूप का अनुभव भी नहीं हुआ है, केवल उस महापुरुषों के वचन के आधार पर और शास्त्रों के आधार के ऊपर, अरे भगवान के मां विश्वास करके, श्रद्धा करके, श्रद्धा पूर्वक जो है भगवान को नित्य निरंतर भजते हैं, उनको भगवान अतिशय प्रिय प्रियतर कहा। तो कारण यह है कि भगवान कहते हैं कि इच्छा करो, जिनको मेरी प्राप्ति होगी, मेरे तत्व को जान गए, मेरे रहस्य को जान गए और वे मेरे को जान करके भजते हैं, तो उसमें कौन सी बात है। और जो मुझको जाने नहीं, समझे नहीं, दर्शन हुए नहीं, और उन्होंने अपने आप को न्योछावर कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया, अब उनका बदला मैं कैसे चुकाऊं। उनके भाव को, श्रद्धा को देख करके भगवान मुग्ध हो जाते हैं कि देखो एक प्रकार से थी, इन्होंने कोई मेरी प्राप्ति नहीं हुई, इन्होंने कोई जाना नहीं कि मैं कैसा हूं, तो मेरे विषय की बात सुनकर करके और समझो कि पुस्तकों में समझ कर करके सुनकर करके और इनका इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा कि मेरे लिए अपने आप को न्योछावर कर दिया। तो ज्यादा उनकी कीमत भगवान देते हैं। एक भाई तो यह कहता है कि भगवान यदि हमारे को मिल जावे तो मैं उसके लिए अपना प्राण अर्पण कर सकता हूं। प्राण हमारा जो प्राण समर्पण करने से भी भगवान मिले तो मैं एक उनसे मिलने के लिए साहस करता हूं, तैयार हूं। यदि गंगा के बीच के वहां समझो कि डूबने से भगवान मिलते हो तो मैं गंगा में प्रवेश होने के लिए तैयार हूं। एक तो ऐसी शर्त कहता है और ये कहता है कि भी भगवान नहीं मिले कोई बात नहीं, पर भगवान के बीच के मां समझो हमारा थोड़ा प्रेम हो जावे तो मैं अपने न्योछावर करना नहीं, एक प्रकार से तैयार ही उसके लिए कि भगवान के मां हमारा थोड़ा प्रेम हो जा, तो उस प्रेम के मूल्य के बीच के मां मैं अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार हूं। तीसरा कहता है कि मैं अपने आप को भगवान के समर्पण करने के लिए तैयार हूं इस शर्त के ऊपर कि भगवान मिल जा या भगवान में थोड़ा प्रेम हो जा। वो कहता है मैं कोई भी शर्त नहीं चाहता, भगवान हमारे को स्वीकार कर ले हुए तो एक प्रकार से थी हमारा अहो भाग्य है। मैं भगवान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार, अपने प्राण अर्पण करने के लिए तैयार, तो अपना प्राण और अपना सर्वस्व कौन सी दामी चीज है कि जिसके लिए एक प्रकार से मैं भगवान के प्रति समर्पण करूं और साथ में इकरार करूं कि भगवान में मेरा प्रेम हो जावे, भगवान मिल जावे। तो मैं कौन सी चीज भगवान को दे रहा हूं जिसके लिए भगवान पर इतना एहसान करूं। वो तो भगवान का ही मेरे ऊपर एहसान है कि जिसे मुझको स्वीकार कर ले हुए, भगवान मुझको स्वीकार कर ले हुए तो वहां एक समझो कि बदले में मांग करने की क्या आवश्यकता है। हमारे लिए यह सबसे बढ़कर के मांग है कि भगवान हमारे को स्वीकार कर, हम कुछ भी नहीं चाहते कि इसके बदले में भगवान के वहां हमारा प्रेम हुए या भगवान मिल जावे, दर्शन हुए, कोई आवश्यकता नहीं भगवान के दर्शन देने की या शर्त करने की कि भगवान एक प्रकार से हमारे से ये इकरार करे। हम तो ये चाहें कि एक प्रकार से थी हमारा जो शरीर है, हमारा जो प्राण है, हमारा जो जीवन है, ये किसी भी प्रकार से भगवान के काम में लग जावे, भगवान से बदले में चाहते कुछ भी नहीं। तो भगवान समझते हैं कि इसका जो सिद्धांत है बहुत निष्काम और उत्कोटि का है, जो ये कुछ भी इकरार नहीं करता, कुछ भी नहीं चाहता, भगवान के मां थोड़ा भी जो प्रेम, नाम मात्र भी प्रेम हो जावे और उसके लिए अपना शरीर काम में आ जावे, अपना सर्वस्व काम में आ जावे, ये तो हमारे लिए बहुत जीत की चीज है कि कहां तो हम और हमारा सर्वस्व है और कहां भगवान का थोड़ा प्रेम, भगवान का जो थोड़ा प्रेम है उसके बदले में त्रिलोकी के सारे जीव अपने आप को समर्पण कर दें अपने प्राणों को, तो भी उसके थोड़े प्रेम के बराबर के मां उनकी कीमत बराबर नहीं होती। तो मेरे एक आदमी के समझो कि सर्वस्व की कीमत उसके बराबर थोड़ी हो सकती है। भगवान जो हमारे को प्रेम का दान करें वो तो एक उनकी विशेष दया है, वो तो उनकी उदारता है। हमारे इसी का फल थोड़ा ही है कि हमने अपने आप को समर्पण कर दिया तो उसके बदले में भगवान एक प्रकार से प्रेम दान दिया। प्रेम दान हमारे शरीर का हमारे सर्वस्व का मूल्य नहीं है, उसका तो कोई मूल्य है ही नहीं। ये तो उसकी दया है जो समझो कि जो कुछ हमारा है उसको भगवान ने बना स्वीकार कर लिया, ये उनकी बड़ी भारी हमारे ऊपर दया है। हम उसके अपना सर्वस्व समर्पण करें और ऐसा मन में भाव रखें कि हमने कुछ भगवान को दिया और भगवान के ऊपर कुछ एहसान करें, तो ये तो हमारी बेसमझी की बात है। तो यह बेसमझी एक प्रकार से हर एक भाइयों में रहा करती है। तो हम लोगों के मन हो गए तो कौन सी आश्चर्य की बात है। हम लोग भी समझो किसी महात्मा के पास में जाया करते हैं तो एक प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारा हमारे अमुक काम हो गया इस कारण से आने में देरी हो गई, थोड़ा विलंब हो गया तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आने का विचार तो हमारा आज 10 दिन पहले ही था, किंतु हम एक प्रकार से अमुक अमुक काम के कारण से नहीं आए। हमारी स्त्री बीमार हो गई, हमारे पुत्र बीमार हो गया, हमारे इस प्रकार से एक जरूरी काम था इसलिए हम नहीं आए। तो महात्मा तो इस बात को सुनकर के हंसता है, आकर के पहले आकर के हमारा और विशेष उपकार करते, अब थोड़ा उपकार करोगे तो एक प्रकार से भैया तुम्हारी धारणा बहुत ही ठीक अच्छी है, दूसरी बार और जल्दी आना, बड़ी कृपा करी आपने। तो हम लोग जो किसी महात्मा के पास में जाकर के एहसान करें अपने वहां जाने का सत्संग करने का, तो वो हमारी बेसमझी है, उसके रहस्य को लोग नहीं जानते। हमको तो ये समझना चाहिए कि हम गए और महात्मा मिल गए और उन्होंने अपना वक्त दिया, तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि जो हमने एक प्रकार से थी ये लाभ उठाया और उन्होंने अपना समय दिया, उनके लिए हम आभारी हैं। वे यदि एहसान करे हमारे ऊपर तो उनका दावा है, हक है, और लाभ हम उठावें और हम ही उस पर एहसान करें तो भी एक प्रकार से महात्मा पुरुष जो होते हैं वे हंसते हैं और उसको बुरा नहीं मानते हैं। तो फिर भगवान भला कैसे बुरा मानेंगे। भगवान तो और बहुत समझो कि गहराई के मां हैं और बहुत तत्व रहस्य को समझने वाले हैं। हम कहें भी ये तो भी भगवान हंसेंगे मन के बीच के मां, और हम भगवान पर एहसान करें या बदले के मां उसका भेलू समझ करके बदले में कुछ चाहे, हम तो ये चाह सकते हैं कि प्रभु हम लायक तो नहीं है, पात्र तो नहीं है, किंतु एक प्रकार से थी आप बिना ही कारण सब पर दया करते हैं, प्रेम करते हैं। उस न्याय से थी जैसे भिखारी एक प्रकार से अपने भीख मांग सकता है, कोई उसका अपने दावा नहीं कुछ रख करके नहीं गया, वो तो भिखारी है, तो भिखारी एक प्रकार से भीख तो मांग ही सकता है। इसी न्याय से थी मैं भी आपके यहाँ भिखारी के रूप के बीच के वहां प्रेम की भिक्षा मांगता हूँ, पात्र तो नहीं हूँ किंतु दाता के कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो यह बात आपने दाता के पास में भिखारी बनकर के प्रार्थना की जा सकती है, किंतु मैं एक प्रकार से आपकी भक्ति करता हूँ, मैं आपका ध्यान करता हूँ, मैं इस प्रकार से करता हूँ और उसके बदले के बीच के मां मैं आपका दर्शन चाहता हूँ। दोष की बात नहीं, क्योंकि भगवान का जो दर्शन है वो पारमार्थिक चीज है, तो इसके लिए कोई दोष तो नहीं है, किंतु बेसमझी जरूर है कि किसी बदले में हम चाहें। उल्टी बात है कि हम भगवान की भक्ति करें, भजन करें, ध्यान करें या एक भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण करें और इस बात को भगवान स्वीकार कर ले तो हमारे सौभाग्य की बात है, हमारी चीज भगवान के काम में आ गई। हमारा जो तन है, मन है, धन है, हमारा कोई अपने कोई भी हमारी चीज है और वो भगवान की सेवा के काम में लग जावे तो एक प्रकार से वो चीज सफल होगी हमारी। हमारी उसके मां ममता थी, ये भी एक प्रकार से वास्तव में थी तो हमारी गलती, किंतु वो तो और ज्यादा गलती है कि उसको देख करके और भगवान पर एहसान करें। हमको तो ये समझना चाहिए कि जो कुछ हमारी हमारे अधिकार के मां है और वो भगवान के यहां समर्पण करें, तो ये समझना चाहिए कि भगवान की हमारे पर बड़ी दया है। प्रभु की चीज सब थी, हमारी तो थी नहीं, जो कुछ तन मन धन इत्यादि के भगवान की चीज थी। हमने मूर्खता से थी अपने अलग कर रखी थी और एक प्रकार से भगवान से अलग हो रहे थे। इसलिए एक प्रकार से भगवान से हम वंचित थे। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, केवल हमारा ही दोष था, किंतु ये हमारे समझ में ये बात आई कि देखो कि हमारी कितनी निष्ठा है कि भगवान की चीज को थोड़ी को लेकर मैं अलग जा बैठा और अभिमान कर बैठा कि ये चीज मेरी है, और फिर भी भगवान एक प्रकार से दयालु भगवान हमारे इस दोष की तरफ भी नहीं देखते। और जब हमारे में समझ में आई और हम कहते हैं कि ये लो ले लो, तो बात तो ये होनी चाहिए थी भगवान की साधुता के हिसाब से कि भाई तुमने जब ये चीज अलग ले ली और उससे तुम्हारे को सुख हो रहा है तो तुम इसे अपना रखो, सुखी रहो। अब भगवान एक प्रकार से उसको स्वीकार कर लेते हैं तो कितनी भारी उनकी हमारे ऊपर दया है। उस दया के तत्व को थोड़ा गंभीरता से सोचो कि वो भगवान आपकी चीज है और आपकी चीज स्वीकार कर ली तो अपने सिर से बोझा दूर हो गया, हम हल्के हो गए और भगवान ने अपना लिया। थोड़ा संसारिक ऊपर विचार करके देखो कि हम लोग कोई पांच भाई हैं और एक भाई समझो कि उसमें 10,000 रुपया लेकर के अलग हो गया, अपना थोड़ा मामूली सब स्टेट 10,000 का लेकर के अलग हो गया और हम चार भाई शामिल रहे और उनके पास में 1,00,000 रुपये हो गए। अब वो 10,000 रुपया लेकर जो भाई अलग होया है और वो आकर के कह रहे कि मेरी बड़ी गलती हुई, मैं इस पर अपना अधिकार जमा लिया, बड़े भाई से प्रार्थना करे कि नहीं ये मेरे कसूर को माफ करो, ये आप ही की चीज, आप इसको ले लो और मैं ये नहीं चाहता कि आप 1,00,000 रुपया को जो द्रव है उसका हिंसे के अनुसार मेरी पांति होनी चाहिए। नहीं, वो तो आपकी कमाई, आपकी चीज हमारी है ही नहीं, बल्कि ये हमारी निष्ठा है कि आप हमारे बड़े भाई मात के तुल हैं, उनके रहते हुए इतने धन को लेकर के मैं अलग जा बैठा, तो अब इसको आप एक प्रकार से मेरे कसूर को माफ करके स्वीकार कर लो तो एक प्रकार से मेरे को संतोष होए। और वो बड़ा भाई मैंने स्वीकार कर ले, अच्छा भैया कोई बात नहीं, तेरो मन राजीव जैसे कर ले। तो उसके चित के वहां प्रसन्नता देखे तो वो भाई स्वीकार कर लेता है और वो देखता है कि भाई इसमें अपनता है, इसकी मेरापना है, तो वो कहता है नहीं भैया तेरे पास जो चीज तू ले गए वो तो ठीक ही है, और भी तुम्हें जो दरकार हो तू ले जा, ये भी तुम्हारा ही है। तो ये उस बड़े भाई का कहना और अच्छा है। तो भगवान हमारे को ये कहे कि नहीं भैया, जो तुम्हारे अधिकार में जो चीज है वो तो तुम्हारी है, कोई आपत्ति नहीं, और भी तुम्हारे को जितना ऐश्वर्य चाहे दरकार हो जितना तुम और ले लो। तो मूर्ख आदमी हो तो उसको और ले लेगा कि बोले ठीक है। इसी प्रकार से वह भाइयों के वहां कोई मूर्ख होगा तो कह देगा ठीक है भाई साहब, ये तो आपकी बड़ी दया है, और 10 लाख रुपया दे दो। हर वो दे देता कि चल ले लो, वहां तो असंख्य करोड़ों रुपये है। ऐसे भगवान हमारे को यदि और किसी दया करके दे कि तुम ले लो, तो वो लेना हमारा समझो कि अनुचित है। हम तो कहते पढ़ो, हम इसको लेकर के भी निभा नहीं सके, तो उपयोग उसका ठीक नहीं कर सके, इसीलिए एक प्रकार से आपके चरणों में इसको वापस करते हैं, आपकी चीज ही आपके चरणों में वापस करते हैं। मेरी सामर्थ नहीं कि मैं एक प्रकार से निभा सकूं, मैं इसको निभा सकूं हूं और मैं और लेकर के निभा सकूं। इसलिए नाथ ये जो कुछ है एक प्रकार से मेरे ऊपर दया करो, और कुछ काम भी मुझसे कराना हो तो आप मुझको अपना सेवक बना करके करा लो, उसमें मैं करने के लिए तैयार हूं। तो बोले भैया एक प्रकार से हम जो काम कर रहे हैं ना, वो वही काम एक प्रकार से तुम इस संसार पर त्रिलोकी पर मालिक होकर के कि अरे इसका सब शासन करो। हम कहे पढ़ो, हम तो एक मामूली ऐश्वर्य को लेकर शासन करवा फेल हो गए, और आप इतना बड़ा जो भार मुझको देते हैं तो इसमें संसार का है, मेरा क्या ही सोचा आपने, जो विचार किया होगा ठीक क्या होगा, किंतु हमारी तो समझ में नहीं आता है कि एक प्रकार से इसको आपको कोई बर्बाद करना है क्या, इसके कोई लायक हो उसी को ये पद आप दो। मैं तो प्रभु एक प्रकार से थी बस आपके पास रह करके आपकी सेवा ही करता रहूं, और ये मुझको ऐसा नहीं चाहिए। तो भगवान एक प्रकार से थी उसकी परीक्षा के रूप में देखते समझते हुए, वो परीक्षा समझ करके है उसे उनके मां त्याग बढ़ाने के लिए, निष्काम भाव बढ़ाने के लिए, जैसे भगवान श्री विष्णु आपने प्रहलाद को कहते हैं नरसिंह भगवान कि जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम वरदान मांगो। तो प्रहलाद कहते हैं कि आप क्या कहते हो, मैं आपकी भक्ति करूं उसके बदले में मैं आपसे वरदान ले हूं। तो भक्ति का बदला वरदान हुआ, तो वो तो एक प्रकार से भक्ति को बेचना है, तो ऐसी भक्ति तुमने नहीं की है इस उद्देश्य से। और बार बार आप कहते हो तो हो सके है कि मेरे भीतर के बीच के वहां ऐसा कोई भाव या काम न हो, तो प्रभु आप वरदान तो देना चाहते ही हो, तो यही वरदान दो कि मेरी कामना का सर्वथा नाश कर दो, तो ये निष्काम भाव। तो हमारे को भगवान जिस त्रिलोकी का राज भी देने के वास्ते तैयार हुए, तो प्रभु से ये प्रार्थना करने में कोई आपत्ति नहीं कि प्रभु मैं उसके लायक नहीं, आपको कोई बर्बाद करना हो तो वहां मैंने बैठा दो। शासन करने के लिए न्याय करने के लिए एक बंदर को बैठा दिया जाए तो कोई उससे न्याय की आशा रखे तो मूर्खता है। तो वही बात है, तो ये प्रेम के विषय की, प्रेम के रहस्य की, प्रेम के तत्व की बात आपको किसी सुनाई। अब समय हो गया। नारायण 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 राम चंद्र की जय, और मुरुगन वंशी।